अब आगे क्या होता है आइए देखिए कि इसके बाद वाली कौन सी बात है जिसकी अल्लाह तैयारियां फरमा रहे हैं। वली नुअल्लिमहु मिन तावील अहदीस, एक तो जगह दी पांव जम गए, उससे भी बड़ी बात जो अल्लाह यूसुफ के मामले में कर रहे थे वो क्या, ताकि हम इसको सिखाएं बातों की तह तक पहुंचने का इल्म। ये है अब तावील अहदीस का असल माना जो यहाँ आ रहा है। बातों की तह तक पहुंचने का इल्म कौन सा अल्लाह ताला देना चाहते थे, वो इल्म था मामला फहमी का। अजीज मिस्र के घर में आपको जगह देने का बुनियादी मकसद क्या था, कि आपको मामला फहमी हो। अजीज मिस्र का घर एक किस्म का सेक्रेटरीट था, वहाँ बड़े बड़े लोग आते होंगे, इंतहाई आला सतह के इजलास वहाँ होते होंगे, इंटरनेशनल और नेशनल किस्म की कॉन्फ्रेंसिस होती होंगी, बातें होंगी, लॉ डिस्कस किया जाता होगा, माली मामलात वहाँ डिस्कस होते होंगे, और यूसुफ खामोशी से ये सब कुछ ऑब्जर्व करते रहे। तो उनकी एक तरबियत हो रही थी कि किस तरह वहाँ आपने कल फ्यूचर में ये काम करना है। बात समझ रहे हैं? देखिए, बास दफ़ा हम बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में रखते हैं अपने बच्चों को, लपेट लपेट के माएँ बच्चों को रखती हैं, और होता भी है, ज़रा बाहर निकली वो ब्लैंकेट का एक कोना ऊपर हुआ ना, वहाँ से हवा लगी, वापस आए तो छींके मार रहे थे लाडले बच्चे। और एक इसके बरक्स गांव में देहातों में पलने वाले बच्चे भी आपने देखे होंगे, सर्दी हो या गर्मी नंगे पाँव फिर रहे होते हैं ठंडी और गर्म ज़मीन पे, कुछ भी नहीं होता उनको। इधर भूख भूख के माए फीडर भी धो धो के बनाती हैं। मुझे एक सिस्टर याद आती है हमारी फैमिली की है, पहला बच्चा उनका हुआ तो मिसकैरेज हो गया, कुछ इस तरह का मामला हुआ एक आधा बच्चे से, फिर जो उनके बाद उनका बच्चा हुआ ना, बिलीव मी के रात को 2 दफा उसके फीडर धोती थी वो, जितनी दफा रात को उसको दूध देना, पहले पतीली, उस वक्त इतने इंतजाम भी नहीं थे कि ये सारे वार्मर्स और आपकी बेड साइड पे हो, किचन में जाके पतीली में उसका फीडर धोना, उसको गर्म करना, फिर दूध को नाप तोल के फिर पिलाना, इस तरह उसने अपना बच्चा पाला, क्योंकि इसको जरा सीम ना लग जाए, और जब हाथ लगे होते हैं तो हम इन चीज़ों पर रहते हैं। लेकिन वो बच्चे हर दूसरे दिन डायरिया का शिकार होते हैं। इसके बरक्स आप देखिए मट्टी मिला पानी पीने वाले गाँव के बच्चे कैसे पल जाते हैं। तो मत आप इस बात का जिम्मा लें कि हम अपने बच्चों की हेल्थ के खुद जिम्मेदार हैं, अल्लाह पे डाल दें। तो बहुत प्रोटेक्टेड माहौल वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़माने की ऊंच नीच नहीं जानते, यकीन करें, उनको दुनिया को सीख आता ही नहीं है नापना। आप इसको यूं देखिए, एक हमारे मारूफ मुहावरा भी कह लें कि जो बच्चे फैमिलीज के अंदर पलते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया में जो बच्चे पलते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, और जो बाहर के मुल्कों में बच्चे पलते हैं उनको लोग क्या अमूमन कहते हैं, बोले टुड्डू, हाँ बात ही नहीं करनी आती, अम्मी आपके भाई का फोन आया है। तो मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं लगता ये अल्लाह का बंदा, ये तुम्हारा मामू है। अच्छा जी, यानी इस तरह के बच्चे होते हैं ना ऐसी बात। तो वो क्या वजह है कि जब हम अपनी फैमिलीज में होते हैं, माशाल्लाह हमारे खानदानों में सियासत चलती, सास बहू की सियासत, उधर से झगड़े, मियाँ वो सारा दिन अदालतें भुगतते रहते हैं, अम्मी उसको कह रही फिर कह रही, वो अंदर से खामोशी से सीख रहे होते हैं। अब जब इन मुल्कों में आते हैं तो यहाँ ऐसे कोई मामले नहीं होते, तो नतीजा क्या होता है कि फिर ये बच्चियाँ अगर शादी के बाद पाकिस्तान भेज दी जाएँ तो वो एक अब महीने दो में परेशान हो जाती, कहती या तो हिपोक्रेसी बहुत है या तो मुनाफ्त बहुत है, यहाँ तो लोग ब्लैक बुलिंग बहुत करते हैं, फ़र्क है ना। यहाँ ये बताया जा रहा है कि यूसुफ के अपने घर का माहौल बहुत सिंपल था, और उनका ज्यादा से ज्यादा दायरेकार होता भी क्या, कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, चलो जाओ बकरियां चरा लाओ, आओ खाना खा लो, सो जाओ, देहाती की जिंदगी यही थी ना। अल्लाह यूसुफ को एक मिनिस्टर के घर में ला रहे थे ताकि कल मुस्तकबिल में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुल्क में मिनिस्टर बने तो इनको ये रंग ढंग आते हो, चलना ही ना आता हो तो उस महल के दरवाजे पे खड़े होकर टांगे ना कांपने लग जाती, जहां बाद में यूसुफ दाखिल होंगे, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत की, अल्लाह सुबहान ताला ने यही सब कुछ हमें सिखा दिया कि तुम बच्चों को थोड़ी सी दुनिया के रंग दिखाओ। आप आज सब एक काम करें, करेंगे, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, रिस्क भी बहुत बड़ा है, 20 पाउंड दें अपने अपने बच्चों को, जिनके जवान बच्चे हैं, बच्चियों को तो छोड़ें वो तो बेचारी क्या जाएंगी, जवान बच्चे हैं ना, 20 पाउंड दें, और उनको साथ 2-4 सब्जियां और 2-4 दालें और गोश्त की 1-2 किस्में दें कि जाओ बेटा इलिंग रोड से सब्जी गोश्त दाल लेके आओ। मैं कहती हूँ सारे दुकानदार भी आज खुश हो जाएंगे, जो गली सड़ी सब्जियां होंगी ना वो बिक जाएंगी आज उनकी, करके देखें। हाँ देखिए, बच्चों को पालना तो नुकसान तो करना ही पड़ेगा, यकीन करें आज हमारे बच्चे सब्जी भी नहीं खरीद सकते, इल्ला माशाल्लाह। मुझे सबका नहीं हाल पता, लेकिन अमूमियत का हाल यह है। सच है कि झूठ है? वो फेसबुक से सब्जी खरीदेंगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फेस टाइम से दिखाएंगे ये सब्जी ले लूं। अल्लाह हु अकबर। जी आप पीछे से। वालेकुम सलाम। जी ऐसा होता तो कसूर आपका बेची का नहीं है, कसूर आपका है। शुक्र है आपने तो वाहिद मांगा था वो जमा में ले आई, 9 भिंडियां ले आई, ये भी बड़ी बात थी। जी इधर से जिसने भी पहले हाथ खड़ा किया आप में से। जी शाहिन जी आप। जी आपने प्याज लेने का, प्याज ले तो वो सिर्फ प्याज लाया वाहिद में, एक प्याज लाया जमा नहीं लाया।
मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे लौकी ला दे तो वो कुकम्बर उठा
दी। अब देखिए सबके दुख सारे खुल रहे हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड को लौकी लाने भेजा तो वो कुकम्बर ले आए। जी आप। मियाँ को 20 साल में पता नहीं कि घर में नमक कहाँ है, पोते को पता चल गया।
और माशाल्लाह वो 9 साल का है और यकीन करें कि ये सब खूब
माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं ना कि ये सारे हालात क्या हमें बताते हैं कि आज इन सबसे पूछ लूँ तो 5 दालों के नाम भी नहीं किसी को ठीक तरह से आते ना। तो ज़िंदगी में आप याद रखिए कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं होती। बच्चों को थोड़ी सी हॉट ना देनी चाहिए। ये तो सिर्फ अब हम जोक में आ गए ना, खाने पीने की सब्जियां दाल है, वो गूगल से सर्च करके आपके साथ सारी बास्केट मंगवा लेंगे। आज मसले भी तो बहुत सारे आसान कर दिए ना लोगों ने, क्या आप बस बैठे रहे हम आपके सारे काम कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि जीना आना चाहिए, जिंदगी का एक मकसद। किताबें पढ़ पढ़ के डॉक्टर आप बन जाते हैं लेकिन आप मरीज नहीं देख सकते, ये बात समझिएगा। आज के दौर में लोग डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन डायग्नोज नहीं कर पाते जब तक अल्ट्रासाउंड ना हो और MRI ना करें। एक टेबलेट नहीं देते डॉक्टर आपको खाने को क्योंकि उनको डर है कि रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी हम गलत काम ना कर दें। इसके बरक्स पहले दौर में आप देखिए सिर्फ नब्स देख के हकीम बंदे को ले जाते थे, आंखों का रंग देख के बता देते थे कि तुम्हें यरकान हुआ है और चेहरे के ऊपर कुछ तासुरात। आज इसीलिए कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के डॉक्टर आज भी कामयाब हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो तजुर्बे और मुशाहदे से सीखते हैं। और उधर इतने मरीज आते हैं एक दिन में, इतने यहाँ पूरे महीने में नहीं आते। तो इनके पास सिर्फ मशीनें और ये चीज़ें होती हैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गई। आप कह सकते हैं कि यहाँ तावीलुल अहादीस से मुराद कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस ही आजकल वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अनकॉमन है। कभी कोई कहते हैं ना कि ये करो तुम यूज़ योर ब्रेन, तो बच्चे उसका हल क्या करते हैं, यूज़ योर ब्रेन। ऐसे ही मैंने एक जगह देखा, कोई बात हो रही थी किसी बहन भाइयों में, तो वो इसको कह रही थी काम करो ये करो वो करो, तो भाई शायद या बहन कोई भी बाहर, मुझे याद भी नहीं बहुत पुरानी बात है, तो खुलासा कह के भाई पूछ रहा था कि तुम बताओ मैं क्या करूँ ना, क्या काम करूँ। तो बहन उसको कह रही थी यूज़ योर ब्रेन कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो उसने कहा ओके आई विल यूज़ माई ब्रेन, अपना बैग पोड़ा अपने कमरे में चला गया कि मेरा ब्रेन ये कहता है कि तुम अकेली काम करती रहो मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो बस दफ़ा कॉमन सेंस नहीं होती बात करने का तरीका। आप देखिए कि पहले दौर में जब हम अपने घरों में होते थे तो मुझे अच्छी तरह अपने ख़ानदान की कुछ आंटियां याद हैं, हम उस वक्त छोटे थे वो बड़ी थी, तो कोई मेहमान आता था तो वो यूं करती थी 4 कप चाय बना के लाओ, और लोगों ने ये इशारा किया ये देखिए ये क्या है आप बताएं भला, टी चाय बना के लाओ, और इसी तरह से ग्लास आइसक्रीम बिस्किट, यानी माँ एक इशारा करती थी बच्चियाँ उठ के चली जाती थी। ऐसा होता है 2 मिनट के लिए माएँ गईं और वो इंस्ट्रक्शंस दे के आ गई। इन्होंने मुझे आप ही सुनाइए वो जो ग्लास वाली और ट्रे वाली थी, एक तो वो याद है मुझे कि बच्ची इनकी थी तो ये कुछ काम करी थी, इन्होंने कहा बेटा तुम जाओ बैठो टेबल पे, मैं आ रही हूँ, खाना लाती ना खाने की टेबल पे, तो कहती कि मैं आती हूँ तुम जाओ बैठो टेबल पे। तो थोड़ी देर बाद आके देखा तो वो कुर्सी की उधर टेबल पे बैठी हुई थी। फिर एक दफा इन्होंने कहा कि जाओ बेटी ट्रे में पानी लाओ, ट्रे में पानी लाओ। तो इनका मकसद क्या था कि मेहमान आए हुए तो हाथ में ना ग्लास ले आना, ट्रे में पानी लाओ। कहती काफी देर हुई है गई, मुझे खटखट की आवाजें तो आ रही है, तो बाद में देखा तो दरवाजे में खड़ी टिक 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 कर रही, क्या ट्रे के अंदर पूरा एक पानी का ग्लास वाला। कि मम्मी आपने कहा था ट्रे में पानी लाओ। तो आप देखिए अब ऐसे लोगों को अगर सासें कुछ कहें तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए ना जी। फरमा बरदारी हद से ज्यादा है, ये तावील उल अहादीस के बहरहाल खिलाफ है जी।
पहले गई छोटी सी राकेश, तो एक दिन कहती है फोन मम्मी आज मैंने कद्दू लेके पका लिया ना, बगैर छीली उसने पका दी, फिर कहती हूँ तो गाली नहीं रहे।
अल्लाह हुक्म। तो बहरहाल आप देखिए कि वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, इंसान जितने हाथों में रहता है उतनी उसकी तरबियत होती है, उतने लोग उसको मानते हैं। हम बस दफ़ा बहुत छोटे से सर्कल में जीते हैं लेकिन फिर हमें इतना दिखता भी नहीं है। और ये आज भी बात मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि जो बंदा किसी छोटी सी जगह में ज़िंदगी गुजारता है, आप अपने ख़ानदान के कई लोगों को देखेंगे शायद लाहौर से बाहर भी नहीं कभी गए, चलिए अगर उन्होंने कस्बे या देहात से बाहर का सफ़र किया तो एक दो शहर, कराची नहीं गए होंगे, लाहौर में गए हैं, इस्लामाबाद नहीं गए होंगे, उनकी सोच बिल्कुल उतनी होगी। लेकिन जो लोग आज एक शहर कल दूसरे शहर, एक मुल्क दूसरे शहर, उससे क्या होता है कि उनको लोगों को पढ़ना आ जाता है। तो जितने ज़्यादा लोगों से इंसान का इंटरेक्शन होता है उतना समझ आता है। और एक छोटी सी बात आपको बता दूं, इल्म की भी यही शान है। हमारे असलाफ उस शख्स का इल्म कबूल नहीं करते थे जिसने सिर्फ अपने ही शहर में बैठ के पढ़ाओ, रहला कहते थे इसको, इल्म के सफरों को। माएँ इस बात की ख्वाहिश करती थी कि 16-18 साल का होने तक हमारा बच्चा कई मुख्तलिफ शहरों में उस्तादों से पढ़ के आ चुका हो। वजह क्या होती है कि जब थोड़ा सा इल्म होता है ना तो सख्ती आती है, शिद्दत है। आज हमारे मुल्क में किसी गांव में जाके आप जुमे का खुतबा सुने, इतनी बार दफा आपको उनकी बात से रिजिडिटी दिखेगी क्योंकि उन बेचारों ने इससे पढ़ के देखा ही नहीं, गांव के तनाजुर में ही वो हर चीज़ को देखेंगे। हो सकता है शहर में आए किसी को ज़रा सा गांव से खुले माहौल में देखें सबको मुनाफ़त का फतवा दें। और अगर मैं कहती हूँ पाकिस्तान के आलिम जो सिर्फ वहाँ इतने दर्द के साथ तबलीग करें, कभी हम वेस्ट के मुसलमानों को देखें तो मैं कहती हूँ क्या क्या फतवे ना दे दें। बाज़ दफ़ा आप बाहर के मुल्कों में आते हैं, इतना यूथ काम करती है, इतना माशाल्लाह दीन का काम है, लेकिन उनके हाल होलिए कई चीज़ें फ़र्क होती हैं। तो सोच खुल जाती है, छोटे बर्तन में छोटी चीज़ आ रही होती है, बड़े में बड़ी आती है, थोड़े इल्म में सख्ती होती है, इल्म ज़्यादा होता है तो नरम होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आटा गूंदते हैं ना, थोड़ा पानी डालेंगे ना तो सख्त होकर सख्त रोटी पकेगी, और जब आप आटे में पानी ज्यादा डालते जाते हैं तो दिन ब दिन आप देखते हैं कि आटा नरम होता जाता है। और नरम आटे की रोटी नरम हाथों से पकी हो तो वो 2 दिन भी नहीं सूखती, और सख्त आटे की सख्त हाथों से रोटी झाड़ लेंगे तो बस आप यही कहेंगे कि जी आप फौरन खा ले, वरना तो फिर अपने दांतों को आप खुद ही बचा ले। फर्क होता है ना, नया कपड़ा पहनेंगे कड़ कड़ करता है, 2-4-10 दफा धो लें कितना नरम लगता है। तो नया नया इल्म सबको गुनाहगार कर देता है, तुम भी काफिर, तुम भी जहन्नमी, तुम भी कुछ, लेकिन जब वसत आती है तो समझ आता है। और यहाँ बात जो वही थी कि कुरान का इल्म अगर पास हो तो दूर जाकर भी लोगों को समझने का मौका मिलता है, उनके मिजाज, उनके नफ्सियात, उनकी बातें समझ आती हैं। ये आप जो आपके कुरान का सफर शुरू हुआ ना आपकी जिंदगी में, मैं आपको कह सकती हूँ अगर आप इस रास्ते पर चलते रहे तो आने वाले 5 साल आपको पिछले 25, 30, 35, 40 जितनी भी आपकी उम्र है उससे ज्यादा समझदार बना देंगे। कुरान बंदे को लोगों को पढ़ना सिखाता है। एक दफा आप अल्लाह की ये किताब पढ़ लें और इसके बाद आप सब चलती फिरती किताबें समझ आएंगे, लोगों की होशियारियां, मक्कारियां, फरेबियां, वो क्या सोच रहे हैं, हकीकत खुलती है। इसीलिए तो देखिए फिर तनकीद होती है बहुत, क्योंकि लोगों को साफ लग रहा होता है कि इनको हमारी बातें कैसे पता चलती हैं। और बाज़ ऐसे होता है कहते हैं बाद में याद आया था क्या जवाब देना था, कई लोगों का मसला क्या वो बात कही थी उसने, उसके वक्त तो याद नहीं आया, क्या कहूँ घर आके याद है कि ये जवाब देती तो अच्छा था। फ़र्क होता है ना। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को अजनबी माहौल में भेजा ताकि बातों की गहराई भी जा सकें। और ख्वाबों का तो अभी तذکرہ ही नहीं है क्योंकि अभी तक इंसानी नफ्सियात को नहीं समझा था। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ की इस बात को रखा, हालांकि इससे पीछे ख्वाब का कोई तस्करा नहीं है, اور خوابوں کی تعبیر بھی اسی بندے کو زیادہ آئے گی جس کو انسان کی بات آ جائے گی. اور یہاں جو تربیت ہوئی, اللہ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ کے کس کام میں کیا حکمت ہے. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت دی, اس کے بعد 80 سال تک, 80 ایئرز تک اپنے منصب پہ فائز رہے, کوئی ان کو وہاں سے ہٹا نہ سکا. موت کی صورت میں اس عہدے سے ہٹے اور کوئی ان کو اس چیز سے پیچھے نہ کر سکا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام بہترین طریقے سے کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف کی زندگی کا اب یہ دوسرا دور شروع ہو چکا ہے. آیت 22 دیکھیے گا, 22, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, اور جب آپ اپنی جوانی تک پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم اسی طرح محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں. اشدہ کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورۃ نساء میں. شدت, اشد اور اشد دونوں لفظ ہیں اسٹرانگنیس کے معنوں میں, یعنی جسمانی طور پہ بلوغت بھی ہے اور ذہنی طور پہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا. کیا دیا؟ حکمم و علما. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نبوت ہے. عزیز مصر کے گھر میں ہی ان کو نبوت مل گئی ہے, اور اس کے گھر میں رہے, اپنے کردار اور اخلاق سے یہ سارا کچھ دکھا دیا کہ میں واقعی ایک بڑے کام پہ چلنے والا ہوں. بعض کہتے ہیں حکمن سے مراد نبوت ہے اور علمن سے مراد تعبیر الرویا ہے, خوابوں کی تعبیر ہے. محسن کیسے تھے؟ اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے, پہلی دفعہ آیا نا, نمبر 1 لکھ لیں. جہاں جہاں اس پوری صورت میں لفظ محسن آئے گا اس کو نوٹ کریے گا. اینڈ پہ ہم اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنہ بنا دے. اب لگ تو رہا ہے کہ یوسف کی زندگی کے بڑے خوبصورت دن ہیں, مزے میں رہ رہے ہیں, وزیر کے گھر میں ہیں, اور دولت اور حسن ہے اور سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھیے, جو نعمت ملتی ہے نا, اسی سے متعلق آزمائش بھی آتی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا, اس میں خوبصورتی بھی دی, ایک نعمت تھی, لیکن یہی خوبصورتی یوسف کے لیے امتحان بن گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے نا, وہ اصل میں امتحان ہے. بس اگر کسی کو خوبصورتی دی ہے نا اللہ نے, تو یہ انعام نہیں ہے, امتحان ہے. کیونکہ خوبصورتی ہوتی ہے تبھی تو بندہ دکھانا چاہتا ہے, اور زیادہ اس کو چمکاتا سے جاتا ہے. کسی کو علم دیا ہے, امتحان ہے. کہ اس علم کو پا کے تکبر میں تو نہیں آ جاتا. کوئی اچھا بول سکتا ہے, یہ بھی امتحان ہے. کہ اپنی باتوں میں پڑھ کے اللہ کی بات کو تو پیچھے نہیں کرتا. تو لہٰذا یوسف کا امتحان دیکھیے باقی نبیوں سے بڑا مختلف تھا. آئے 23 سے اگلی کچھ آئے تھے, وراوت التی ہوا فی بہتی عن نفسہ, اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی سورت نے جس کے گھر میں آپ تھے. کون تھی؟ اللہ نے نام لینا بھی نہیں پسند کیا, لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی تھی. اس کا نام نہیں دیا, تورات میں یہ نام زلیخا تھا. اور جو لفظ ہے نا راوت حلتی, تو مراودہ کہتے ہیں باتوں سے پھسلانا. ٹھیک ہے, کیا کیا؟ وغلقت الابواب, یہ دوسرا درجہ ہے. اور ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر لیے. وقالت ہی تلک, اور بولی جلدی سے آ جاؤ. کم ہیئر لکس, بلایا اس کو اشارے سے. یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت اچانک حملہ تھا, کوئی ڈراما نہیں تھا جس کی پہلے سے ریہرسل کر چکے تھے کہ اس سین کے بعد آپ نے یہ بولنا ہے. بلکہ ان ایکسپیکٹڈلی ایک خوبصورت عورت کی زبان سے اس طرح کی دعوت سن کے زبان پہ وہی لفظ آ گیا جو دل میں تھا. کیا؟ قال معاذ اللہ, کہنے لگے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہ ربی, کہ وہ میرا رب ہے. احسن مسواج, اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. ایک دم حضرت یوسف کی زبان پہ ایسے وقت میں اعوذ باللہ آ گیا جس وقت میں عام مردوں کی زبان پہ اگر اللہ کا نام آئے گا بھی تو سبحان اللہ ہی آئے گا. کہ چلو شکر ہے یہ موقع تو آیا کہ ایک خوبصورت عورت نے ہمیں بلایا تو اپنی طرف. اکثر فلموں اور ڈراموں میں اس طرح کے کلپس جب ہوتے ہیں تو اس کی کئی دن پہلے ٹریننگ ہوتی ہے, یہ بولنا ہے, ایسے بولنا ہے, پھر کئی پکچرائزیشن ہوتی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس عورت کو فتنہ کیوں بنا دیا گیا, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے. اس وقت میں مصر نہ صرف یہ کہ ترقی یافتہ ملک تھا, بلکہ وہاں کرپشن اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مرد جو عموماً برائی کی طرف پہل کرتے ہیں اس کی بجائے عورتیں پہل کرتی تھیں. یعنی کسی سوسائٹی کے ڈکلائن اور اس کے تنزل کا اظہار کیا ہے کہ وہاں مردوں کی بجائے عورتیں سیڈیوس کرنے لگے, عورتیں ٹیمپٹ کریں. وہ عورت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی, گھر میں تھے سب, تھے یہ تھے وہ تھے, پتہ نہیں اس نے کتنا صبر کیا, لیکن اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے وہ جذبے آ گئے جو نہیں آنے چاہیے شادی کے بغیر کسی کے لیے. اور جذبے آ سکتے ہیں کسی حالات میں, لیکن اسلام چاہتا ہے اس کو دبا لو. ایک دن موقع دیکھا جب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس نے بلا لیا کہ آؤ میرے پاس. یہ جو ہی تا لفظ ہے یہ امر ہے, تال او کے معنوں میں کم, تال تال کم ہیئر, یہ معنی ہے. چاہتی کیا تھی کہ پہلا قدم یوسف اٹھائیں. یہ عورت کی عادت ہے, عورت مرد کو ٹیمپٹ کرواتی ہے لیکن پہل نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ایسی ایگو رکھی ہے, انا رکھی ہے, کہ اگر وہ مرد کو اپنی طرف بلائے اور مرد نہ کر دے تو عورت کی جس کو کہنا چاہیے کہ دکھتی رگ پہ پاؤں پڑ جاتا ہے. یہ عورت یہ چاہتی تھی کہ میں خود سجوں سنوروں, اپنے آپ کو اداؤں میں رکھوں, اور میرا حسن دیکھ کر یوسف علیہ السلام خود میری طرف پہل کرے. اور عموماً یہی ہوتا ہے, عورت جو ہوتی پہل نہیں کرتی, انوائٹ نہیں کرتی, لیکن جب مرد کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر عورت کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. اسلام نے عورتوں کے لباس پر جو اتنا زور دیا نا, اس کی یہ حکمت ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. عورت سجے گی تو صحیح, سنورے گی بھی صحیح, اسلام کو بھی پتہ, اللہ کو بھی پتہ ہے, جائز حدوں میں رہ کے کرے گی, لیکن شرط ایک ہی ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ, اور اس جگہ پہ اپنی بیوٹی کو اور اپنی شکل و صورت اور اپنی اداؤں کو نہیں دکھائے گی کہ جہاں سے فتنے کا ڈر ہوگا. اور مردوں کی نسبت میں آپ دیکھیے کہ کپڑوں سے بے نیاز ہونے کا رجحان عورتوں میں زیادہ ہے. بہت کم آپ کو مرد کم کپڑوں میں دکھیں گے. گرمیوں میں فل سلیوس مرد پہنتے ہیں, ان کو گرمی نہیں لگتی, عورتیں سلیو لیس پہ آ جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرد فل پینٹس پہنتے ہیں, عورتیں بعض دفعہ شارٹس پہ آ جاتی ہیں کیونکہ ان کو گرمی لگتی ہے, ان کو اپنا جسم نمایاں کرنا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں, ایون اپنے کلچر میں دیکھیے, کبھی آپ کو مردوں کی آدھی بازو والی قمیض نہیں دکھے گی, شلوار قمیض ہو اور ہاف سلیوز ہو, نہیں ہوگی نا, کیونکہ مردوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہیں ہوتا. لیکن عورتیں عموماً خود تو آگے نہیں بڑھتی, لیکن انداز ادائیں طور طریقوں سے گناہ کی دعوت دیتی ہیں. ایسے حالات میں عموماً 99% مرد پھسل جاتے ہیں, جن حالات میں یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس بات سے بچنے کے لیے؟ اس عورت کی شیطانی دعوت سے بچنے کے لیے, کیونکہ اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں جذبہ رکھا ہے. دیکھیے نیک مرد جو ہوتے ہیں نا, وہ خود کبھی پہل نہیں کرتے, لیکن اگر عورت کی طرف سے انویٹیشن مل جائے تو انکار بھی نہیں کرتے, پھسل جاتے ہیں مرد ایسے وقت میں. اگر عزیز مصر کی بیوی کو 1% بھی امید ہوتی کہ یوسف میری اس دعوت پر انکار کر دیں گے تو کبھی آگے نہ بڑھتی, کیونکہ عورت خودکارا نہیں جانا پسند کرتی, اس کو بہت اپنے حسن کا مان ہوتا ہے. اس عورت کو لگ رہا تھا کہ یوسف میرے حسن سے الگ نہیں ہو سکیں گے. اب ذرا آپ یوسف کے کردار پہ دیکھیے, معاذ اللہ نمبر ایک, انہو ربی, یہاں ربی کے بھی دو معنی ہیں, دونوں ہی ٹھیک ہیں. رب سے مراد اللہ, یعنی اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ برب الناس, ملک الناس, ٹھیک ہے. بس کہتے ہیں کہ رب سے یہاں مراد عزیز مصر بھی ہے. عربی زبان میں رب کا لفظ بہت کامن ہے, تربیت, ماں کو ربت البیت کہتے ہیں, گھر والوں کی تربیت کرنے والی, ٹھیک ہے. تو مالک, بادشاہ, رب کے معنوں میں, آگے بھی جا کے آپ پڑھیں گے بادشاہ کے معنوں میں. تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں یوسف کا کال کیا تھا کہ میں اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا جس نے مجھے اتنے سکون سے اتنے آرام سے رکھا, اور بعض کہتے ہیں کہ عزیز مصر کی طرف اشارہ ہے کہ میرے ساتھ اس نے اتنا اچھا معاملہ کیا, مجھے گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں دی, تو کیا آپ میں اس کی یہ نافرمانی کروں کہ میں اپنی اس کی بیوی کے اوپر ہاتھ ڈال دوں؟ دونوں معنی مراد ہیں. اچھا اب آپ ذرا یوسف علیہ السلام کے اوپر بات سوچ کے دیکھیے اگلے حصے کو پڑھتے ہوئے, انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے. ان کو یہاں کس ظلم کا خطرہ تھا؟ اللہ کے معاملے میں یہ ظلم کون سا ہے؟ بغیر نکاح کے ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. اور اسی طرح اگر آپ اس کو عزیز مصر کے معاملے میں دیکھیں تو ظلم یہاں نمک حرامی کے معنوں میں, کہ کیا میں اتنا نمک حرام ہوں کہ جس مرد نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا کیا میں اپنے آپ کو اس کے پیچھے رکھوں, اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں. آگے کیا ہوا, اگلی آیت سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے, آیت 24, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اور اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا آپ کا, فلی ریڈی تھی, ٹیمپٹڈ تھی, پوری طرح ایموشنلی وہ اسٹرانگ تھی کہ کسی بھی طرح یوسف کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لے. ہاں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور آپ بھی ارادہ کر لیتے. اگر آپ یہاں رک جائیں گے نا ہمہ بھی ہاں پہ کوما لگا کے تو معنی بدل جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ تعویلات بھی کی, وہ کیسے پڑھتے ہیں اس کو آیت کو, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, عورت نے بھی اس مرد کا یعنی یوسف کا ارادہ کر لیا اور یوسف نے بھی کر لیا. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں تو بڑا مجبور ہوں اور یہ تھا اور وہ تھا, لیکن بات کہاں پوری ہوتی ہے, لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي, ہاں وہ کر لیتے ارادہ اگر وہ اپنے رب کی ایک دلیل نہ دیکھ لیتے. کیا مطلب ہے, دیکھیے یوسف نوجوان تھے, ان میرڈ تھے, پردیس میں تھے, ویسٹرن کنٹری میں تھے, پہل عورت کر رہی تھی, مجبور تھے, گھر کے دروازے بند تھے. کتنے لڑکے ہیں جو ایسے حالات میں ریزسٹ کر سکتے تھے, بہت تھوڑے. لیکن یوسف کو کون سی برہان دکھی کہ وہ ریزسٹ کیجیے؟ اب اس کی مختلف تفسیریں دیکھیے, کتنا خوبصورت یہ نقطہ ہے. سب سے پہلے تو برہان وہی ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے اپنی معرفت ڈالی ہوئی ہے, کہ لستو بربکم, کہ اللہ دنیا میں جا کے تجھے بھی رب مانوں گا اور تیرے حکموں کو بھی مانوں گا. ہر بچہ فطری طور پہ ریبیلیس نہیں ہوتا. دوسری روح برہان کی تفسیر ہے ماں باپ کی اچھی تربیت, نیک ماں کے دودھ کا اثر. صرف 8-10 سال ماں باپ کے گھر میں رہنے سے ہی اس بچے کی اتنی خوبصورت تربیت ہو چکی تھی کہ یوسف کے لیے وہ چیز ایک حجت بن گئی کہ نبی کا بچہ ہو کر, نبی کے خاندان سے ہو کر میں یہ گندا کام کروں. یہ برہان تھی. پھر اس کی بہت ساری تفسیریں آپ کو بنی اسرائیلی روایتوں کی مل جاتی ہیں. حضرت یعقوب کی تصویر دیکھ لی, ان کو ایک دم احساس ہوا میں کچھ غلط کام کر لوں, لیکن ان کو آسمان پہ کوئی چیز نظر آ گئی. ان سب باتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں, یہ برہان تقویٰ ہے. التقویٰ ہا ہونا, اللہ کے نبی نے فرمایا تقویٰ دل میں ہوتا ہے. جب ایک بندے کو اللہ کا خوف آتا ہے تو وہ تنہائی میں رات کے اندھیروں میں بھی کسی غلط چیز کی طرف پلٹتا نہیں, بلکہ تفسیر اسحاق میں آتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی. سیریوس ایسے ہی تھوڑی کرتا ہے. اب یہ پڑھنے میں دیکھیں قرآن کا انداز کتنا نپاتلا ہے, لیکن آپ تفسیروں میں پڑھیں تو آپ کو کیا کچھ مل جاتا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے اوپر اس عورت نے حملہ کیا. ایک تو حملہ تھا اچانک بات تھی, پھر بھی سنبھل گئے. اچھے وقتوں میں چونکہ اللہ کو یاد رکھتے تھے تو اس وقت میں ان کو اللہ تعالیٰ یاد آ گیا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر اس عورت کی باتوں میں آ گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہاں برہان اللہ کی وہ ساری نعمتوں کا احساس بھی تھا کہ انہ ربی احسن مثوایا, کہ جس نے مجھے اچھا جذبہ دیا, اچھے حالات دیے. یعنی نیک بندے کو, مومن کو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے یہ گناہ کروں. جب ایک عورت مرد کی تعریف کرنے لگ جاتی ہے تو پھر پھسلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور جب بچیاں تعریف کرنے لگ جائیں لڑکوں کی, کرکٹرز کی, ایکٹریسز کی, فٹ بال پلیئرز کی, تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کے کلچر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ چیزیں جو کل تک بری سمجھی جاتی تھی آج اس کو بھی برا نہیں سمجھتے, اور کہتے ہیں یہ اپنی بچیوں کو بہت دم کھونٹ کے پال رہے ہیں, دیکھنا ان کو نقصان ہوگا. ہوتا کیا کہ پہلے کچھ خواصوں پہ چھایا ہوتا ہے, پہلے وہ آئیڈیل بنتا ہے, پھر آئیڈل بن جاتا ہے, پھر شادی تو وہاں ہونی کوئی نہیں. دیکھیے گلوکار کتنی لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے شہر میں, اگر مسلمان ہے تو ایک وقت میں 4 سے, تو اس کی تو 4000 فین ہے, تو وہ 4000 میں سے 4 نکال دیں تو پیچھے 3996 جو ہیں وہ کدھر جائیں گی. پھر غم پلتے ہیں, پھر جہاں شادی ہوتی ہے وہ شوہر پسند نہیں آتا, यही हालात लड़कों के हैं। एक लड़का जो इतनी हीरोइनों और इतनी खूबसूरत औरतों को देखता करता है, जब उसको बीवी वैसी नहीं मिली, वो तो मिल गई सीधी सादी माँ जैसी, कोई खानदान की सीधी सादी लड़की, तो फिर कहते हैं कि हमारा दिल नहीं मिला और अब हमें ये अच्छी नहीं लगती और ये मुझे क्लिक नहीं करती। शादियां भी ऐसे होने लगी जैसे क्लिकिंग है, बस मुझे क्लिक नहीं करती, ये क्या बात हुई। यानी सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर जब शादियां होती हैं तो फिर वो शादियां गलत हो जाती हैं। लिहाजा अब आप देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो हटे और बचे, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा मंजर और क्लियर हो जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कज़ालिक लिनसरिफ़ अन्हु सूअ वल फ़हशा, ये इसलिए कि हम फेर दें इससे बुराई और बेहयाई को। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बुराई और बेहयाई का रुख फेर दिया, निशानी दिखाकर आपके अंदर से एक आवाज़ उठी कि मैं गलत काम क्यों करूँ। और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, उनमें से एक वो लड़का नौजवान जिसको किसी मर्तबे वाली औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने अल्लाह के खौफ से उसकी दावत को जुटला दिया। और यूसुफ हकीकत में उन्हीं में से दिखते हैं। कौन सी माँ बैठी थी वहाँ जिसका डर होता, बाप थे कोई वहाँ नहीं। इसी तरह का वाक्या में हदीस में मिलता है हज़रत मरसद का। अल्लाह के नबी ने इनको काम दिया कि आप मक्का छुपे हुए बचे हुए जो बेचारे मुसलमान हैं उनको अपनी कमर पर उठा कर लाएँ। कुछ लोग रह जाते हैं हमेशा हिजरतों के नतीजे में, जो चल नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो अल्लाह के नबी लोगों को वही काम देते थे जो वो कर सकते थे, और ये आपकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी दलील थी। खैर, मरसद चौड़े चकले रात को चांदनी रात में छुपते छुपाते मक्का पहुँचे, दीवार फलांगी, चाँद की रोशनी में सफ़र करते थे। दूसरी तरफ से दौरे जाहिलियत की महबूबा उनाक नज़र आ गई, पहचान गई, खुश हो गई, कहने लगी, आहलन व सहलन या मरसद, वेलकम, बितिन दना लैलन, आओ मेरे साथ रात बसर करो। गर्लफ्रेंड थी इनकी दौरे जाहिलियत की, उसके जज्बे भी वही थे, लेकिन मरसद के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कब एना चली जा, अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया। जब उस औरत ने देखा कि ये मेरी बात नहीं मानते तो शोर मचा के बस्ती वालों को उठा दिया, देखो देखो तुम्हारे कैदियों को लेके जा रहे हैं। और फिर मरसद जान बचाते हुए वहाँ से मक्का से मदीना आए, अल्लाह के नबी के पास आके कहा, अल्लाह के नबी मैं उनाक से निकाह कर सकता हूँ। फिर उस पर वो आयात नाजिल हुई कि नहीं अज़ानी ला यनकी इल्ला ज़ानी, और मुशरिक मुशरिका से करता है, सूरह नूर में भी आता है, सूरह बकरा में भी जिक्र हुआ था। अब ये दोनों वाक़यात को आप साथ रख के देखें, कौन सी दीवारें खींचे आप अपने जवान बेटों के आगे पीछे, कौन से बंद बांधे आप अपने मर्दों की नज़रों के आगे, ये बंद बुरहान के। जब हम अच्छी तरबियत कर देते हैं ना अपने बच्चों की, तो आपको हर वक्त उनकी जासूसी नहीं करनी पड़ती। जवान होने से पहले बच्चा जब अपने घर में अपनी माँ और अपनी बहन को इज्जत और एक वफा और खूबसूरती की तस्वीर बने देखता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ जो बिल्कुल मेरी माँ बहन से मुख्तलिफ है। फिर आप देखिए कि जिन सोसाइटीज़ में आज हम रहते हैं, यहाँ भी कुछ उससे कम हालात ख़राब नहीं है कि लड़कियाँ खुद लड़कों को पहल करवाती हैं, तो अपने बच्चों की तस्की करने की ज़रूरत है, उनको सहाबा के किस्से सुना के और ऐसी अहादीस सुना के कि देखो इसका अजर कैसा है। और एक माँ की बात बहुत अच्छी है, कई माओ ने ये बात वैसे मुझे अपने आन पे बताई कि हम अपने जवान होते बच्चों को कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें शादी की ज़रूरत महसूस हो सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हारा निकाह करा दूँगी। लेकिन गलत ताल्लुक, बद नजरी, बद निगाही, अब ये जो असल ताल्लुक, ये तो बहुत पीछे की बात है, इससे बहुत सारी पहले चीज़ें हैं जिसको बाज़ दफ़ा लोगों ने कबूल भी कर लिया हुआ है। चलो ये तो होगा, चलो ये तो होगा, साथ पढ़ते हैं, चलो टेक्स्टिंग तो हो जाए, चलो बातें तो कर लें, चलो ये तो लड़के लड़कियां को फ़र्क ही नहीं रखते। यानी रियली मैंने खुद बच्चियों से पूछा कि जब आप स्कूलों कॉलेजों में होती हैं तो आपको क्या फील होता है, जैसे अपने उन पर मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है कि 8-9 घंटे अपोजिट सेक्स के साथ ही रहना, उठना बैठना, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अब लाइब्रेरी में, अब वो लेबॉरटरीज में, अब कैंटीन में, तो बातें पता चलती, तो वो कहती है मैं फ़र्क ही नहीं लगता। तो फ़र्क क्यों नहीं लगता, जब जज्बे फिर आते हैं तो फिर वो उन्हीं में से उठ के आते हैं ना। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत देर तक इस तरह रखते हैं ना, तो एक तो उसकी कशिश भी ख़त्म हो जाती है, और उस बैटरी का एक असूल समझते हैं, कभी आपने सुना कि जब रात को बैटरी नहीं चलानी होती ना तो उसको अनप्लग कर दिया जाता है गाड़ियों की बैटरीज या कहीं, और सेल्स कहते हैं कि जब चीज़ यूज़ ना करें तो उसके निकाल दें। क्यों? कि जब मुस्तकिल वो पॉजिटिव और नेगेटिव पड़े रहते हैं ना तो आपके सेल्स वीक हो जाते हैं। आज यही मसला है, इमोशंस की जगह पे सिर्फ लस्ट आ गई, और जवान होते हुए बच्चे बच्चियां लव और लस्ट का फर्क नहीं समझते। इस औरत को यूसुफ से लव नहीं था, लस्ट था, इसीलिए तो इस तरह की हरकतें इसने की। अगली आयत पे देखिएगा, यहाँ सू और फुहश की बात आगे जाके हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हमने यूसुफ को सू और फुहश से दूर किया क्योंकि इन्नहु मिन इबादिन अल मुखलसीन, वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। यहाँ फर्क समझिएगा, लफ्ज़ क्या है, मुखलस, मुफअल का वजन है। एक लफ्ज़ होता है मुखलिस, वो क्या है, फाइल। फर्क क्या है, मुखलिस होता है खलूस और इखलास से काम करने वाला, ठीक है, यानी स्टिल ही इज वर्किंग ऑन इखलास, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इखलास। लेकिन मुखलस मुफअल वो शख्स जिसको खालिस कर लिया हो, तो बड़ा दर्जा किसका है, मुखलस का। मुखलस ये है कि फूड इज रेडी टू इट, मुखलस ये है कि इट्स बीइंग इन प्रोसेस कि वो पक रहा है। तो हजरत यूसुफ के अंदर की कैफियत बताई गई कि वो अंदर से अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और खालिस कर दिए गए थे और अल्लाह ताला ने उनको कर लिया था। अब ये बीच में जो बात करके रखवा दिया, असल में एक इलीट किस्म की सोसाइटी के हालात हम पढ़ रहे हैं, और हकीकत है कि अल्लाह ने जिनसे बड़े काम करवाने होते हैं ना, उनको दो चीज़ों से ज़रूर बचा लेता है, एक सू और एक फुखर से। नबी सल्लम ने अपनी जवानी में भी कभी राग रंग नहीं सुने, शादी ब्याह इस तरह की रस्में जिसमें नफ्स को हैजान हो, अल्लाह के नबी वहाँ नहीं थे। एक आध दफ़ा आपने ख्वाहिश भी की कि चलो मैं जाके देखूं ये अरब क्या करते हैं अपनी चौपालों में, एन वक्त पे अल्लाह के नबी के ऊपर नींद तारी कर दी गई, जब उठे तो सुबह हो चुकी थी और वो महफिल ख़त्म हो चुकी थी। अगर आज हम भी चाहते हैं ना कि अल्लाह हमसे दीन के काम ले, तो पहले अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को ख़त्म करें, ख़त्म नहीं हो पा रही तो कम तो करना ही पड़ेगा।